भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 7 श्लोक नंबर 2 और 3। पहले के श्लोक में और दूसरे के श्लोक में तात्पर्य नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने, इसलिए 2 और 3 दोनों श्लोक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने तीन तीन लाइन का श्लोक लिखे हैं इस अध्याय के अंदर, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो मूल भागवत अगर हम पढ़ते हैं जो संस्कृत में है तो उसमें जो श्लोक का तीसरे श्लोक का जो लास्ट वाला लाइन है मूल भागवत में चौथे श्लोक के अंदर दिया गया है संस्कृत, जो संस्कृत में है। एनी हाउ जैसे ये प्रभुपाद जी ने लिखा है उसी के अनुसार हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 2 और 3 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। स्वाध्यायन श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी हरी पुरस्ताज गृहे देवास्त पूर्वम देवास्ततो भवान तच्छयन दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम् न गृहिणीमो वयम् पुच्छम् अहम् अमङ्गमङ्गलम्। स्वाध्याय श्रुत सम्पन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भे तथा तत्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मैं पहले इस अध्याय के पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद दूसरे और तीसरे श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने के रस्सी की भांति लपेट लिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्न किया। अब दूसरे श्लोक का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं कि भगवान अजित ने सर्प को सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर पकड़ लिया। दैत्यों ने 2 और 3 का सम्मिलित अनुवाद है इसमें कि दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। बदले में वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ ही वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना नहीं चाहते, पकड़ना चाहते हैं, अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तो कथा इस प्रकार है, जैसे हम लोग श्री प्रभुपाद महाराज की नमो नम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकाल समस्त गुरु परंपरा को मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। तत्पश्चात हम कथा शुरू करते हैं क्योंकि समय अपने गति से बढ़ रहा है। कथा इस प्रकार का है कि गरुड़ देव जी अपने पीठ पर भगवान को और असुर और देवताओं को सबको एक साथ पीठ पर बिठा करके क्षीर सागर पर जहाँ मंथन होना था वहां ले जाकर के उतार दिया। जैसे ही गरुड़ जी उस स्थान पर सबको उतार दिए तो भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि आप अपना कार्य कर लिए, अब आप यहां से जा सकते हैं। तो प्रश्न उठाया जा सकता है कि भगवान जब काम कराना हुआ तो गरुड़ जी को साथ लेकर के आए और स्वयं उनके पीठ पर सवार होकर के आए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों गरुड़ जी को आदेश दिया कि अब आप यहां से चले जाओ? तो इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि भगवान जानते थे कि जब तक गरुड़ जी यहां रहेंगे तब तक वासुकी यहां नहीं आ सकते हैं, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन सर्प है। इसलिए भय से मुक्त करने के लिए, वासुकी जी को भय से मुक्त करने के लिए गरुड़ जी को ऐसा आदेश दिया भगवान ने कि आप यहां से चले जाइए। अब देखिए इस अध्याय में इसका शीर्षक भी यही है कि समुद्र मंथन और भगवान शिव के द्वारा विषपान। अब समुद्र मंथन की शुरुआत होने जा रही है और समुद्र मंथन जब शुरू होगा तो सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न होगा, इसलिए इस अध्याय का नाम है विषपान, शिव जी द्वारा विषपान भी रखा गया है। अब पहले श्लोक के अंदर विचारणीय शब्द आया हुआ है, ध्यान से हम लोग सुने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ते नागराजन आमंत्र्य फलभागे नवासुकिं परिवीय गिरी तस्मिन् नेत्रब्धिं मुदान्विता आरे भीरे सुरायत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, यहाँ इस श्लोक में राजा परीक्षित के लिए कुरुद्वे शब्द आया है, एक कुरुओं में श्रेष्ठ, क्योंकि परीक्षित के माध्यम से ही हमें भागवत सुनने को मिल रहा है, श्रोता परीक्षित महाराज बने हुए हैं। तो कहते कि ते नागराज आमंत्र्य, देवताओं ने नागराज वासुकी को मतलब आमंत्रित करके वहां बुलाया कि आप आओ और हम लोगों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन कराओ और उस समुद्र से उत्पन्न जो अमृत होगा उसमें आपको भी भाग दिया जाएगा। तो इस प्रकार के बात से सहमत हो गए और देवताओं के साथ असुर लोग मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। आगे कथा आएगी, लेकिन इसमें है कि परिवीय गिरव तस्मिन, चारों तरफ से घिरे हुए उस गिरव को, पर्वत को पकड़ करके वे लोग नेत्रम अवधि मुदान्विता। शायद शहर के लोग तो देखे भी नहीं होंगे कि मथनी के अंदर एक रस्सी होता है, जिस रस्सी को पकड़ करके खींचा जाता है और मथानी तेज घूमती है, जिसके तेज भ्रमण करने से घूमने से घी या मक्खन जो होता है उस दधि के अंदर वो ऊपर आता है। तो नेत्रम अवधि मतलब नेति बनाए, रस्सी बासुकी नाग को रस्सी के रूप में उस पर्वत के चारों तरफ लपेट करके रस्सी से उसको खींचना प्रारंभ करते हैं। नेत्रम अवधि नेति का मतलब है रस्सी, अवधि मतलब समुद्र। अब मंथन मुदान मृता शब्द आया है कि बड़े प्रसन्न चित्त से खुश होकर के मंथन का काम शुरू हुआ। आरे गिरे सूर्यत्ता अमृतार्थे कुरु, तो हम भाई मंथन करने का उद्देश्य क्या है? तो अमृतार्थे समुद्र रूपी अर्थ को पूर्ति के लिए यह मंथन कार्य शुरू हुआ है कि कुछ प्राप्त होगा, और यह इस आशा से यह कार्य किया जा रहा है देवता और असुरों के द्वारा कि जो अमृत निकलेगा उसमें हम दोनों का हिस्सा होगा। लेकिन ये देखिए, समुद्र मंथन करने से पहले ही भगवान ने क्या बुद्धिमानी किया कि जैसे ही सर्प वासुकी को नेति के रूप में, रसी के रूप में पर्वत के अंदर लपेट दिया गया और मथने का कार्य शुरू होने वाला था, तो देवताओं और असुरों से पहले भगवान ने जाकर के, इसमें आया है दूसरा श्लोक में आया है कि हरि पुरस्त जगृह पूर्वम देवास्ततो भवन, कि हरि ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, अजित भगवान ने, कि अभी असुर और देवता दोनों समक्ष खड़े हैं, तत्काल भगवान ने क्या किया कि जाकर के वासुकी नाग के पीछे वाले भाग को हाथ से पकड़ लिया, पूंछ के भाग को भगवान ने स्वयं पकड़ लिया। और जब ने देवताओं ने देखा, श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जैसे ही देवताओं ने देखा कि स्वयं भगवान वासुकी के पीछे वाले भाग को पकड़े हैं, तो भगवान के साथ ये लोग भी पीछे वाले भाग को पकड़ लिए। पुच्छम शब्द आया है, पुच्छम अहे अंगम, सांप के पूंछ को अथला अर्थात पिछले भाग को ये लोगों ने पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ लिए तो देवता लोग भी उनके साथ पकड़ लिए। लेकिन यह स्थिति भगवान की चलाकी का था, क्या किए कि भगवान पहले स्वयं चलाकी करके जिस भाग को स्वयं असुरों को पकड़वाना था उस भाग को स्वयं पहले पकड़ लिए, यह चलाकी थी। भगवान ने जानते थे जा कि अगर हम सर्प के अगला भाग को पकड़ते हैं तो जब मंथन होगा तो वासुकी के मुख से ज्वलंत विषैले पदार्थ निकलेंगे और उस ज्वाला को देवता लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम तो मुख को पकड़े, लेकिन पीछे के भाग को देवता लोग पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसलिए चलाकी किया, भगवान ने पहले उनके मुख को पकड़ा। लेकिन देखते ही देवता लोग तुष्णीम, इसे आगे वाले श्लोक में आएगा कि इस स्थिति को देख करके असुर लोग चुपचाप खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? श्लोक में आया है यहां कि स्वाध्याय श्रुत संपन्ना, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनके अंदर अपने पढ़ाई की बहुत अहंकार होती है कि स्वाध्याय सूत्र संपन्ना। असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्या देवताओं से कम पढ़े लिखे हैं क्या, हम किसी छोटे बाप के बेटे हैं क्या, हम क्यों सांप के पीछे के भाग को पकड़ेंगे, चुपचाप खड़े हो गए, हम नहीं पकड़ते। अब इस स्थिति को देख करके भगवान तो स्वयं चलाकी पहले अपने विचार उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि हमें तो देवताओं को बचाना है, वासुकी के मुख से जो ज्वलन मतलब अग्नि या पदार्थ निकलेगा उसे बचाना है, इसलिए भगवान ने वो पहले पर सारा मन में सोच करके उन्होंने सारा शुरुआत कर दिए थे, लेकिन जैसे ही असुर लोग हट पर तैयार हुए कि नहीं हम पीछे के अंग को नहीं पकड़ेंगे, तो भगवान स्वयं फिर पीछे के अंग को पकड़े और देवता लोग भी फिर उनके साथ पीछे वाले अंग को पकड़ लिए। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्यात जन्म कर्म भी, कितने आसुरी प्रवृत्ति का संकेत मिलता है इस लाइन के अंदर कि पढ़ने लिखने वाले लोगों के अंदर कितनी कूट कूट करके अहंकार भरी हुई रहती है, क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर। अगर हम भागवत का प्रथम स्कंद पढ़ते हैं तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं कुंती महारानी कहती हैं कि जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिया है और उसके पास धन है, तो ये सारी योग्यता जो जिसके पास हो जाती है वह भगवान को ठीक से स्मरण नहीं कर पाता। और यह देखा जाता है कुंती महारानी क्या यह उक्ति है, कुंती महारानी कहती है कि आप ऐसे अहंकार युक्त व्यक्ति जो धनवान से मदान्वित हो रहा है, वैसे व्यक्ति को आप प्रिय नहीं बन पाते, अर्थात उस वैसे व्यक्ति को आप ज्यादा श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। त्वाम अकिंचन अगोचरम, आप वैसे व्यक्ति से खुश होते हैं जो अकिंचन है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, विद्वता के चक्कर में, धन के चक्कर में, इन सब स्थितियों को इकट्ठा करने में वह नहीं पड़ता। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर धुमान मदह कुमान नैवार अत्यति धातु में तुम अकिंचन अगोचरम, हे भगवान आप उनको अपने दृष्टि में रखते हैं जो अकिंचन है, उनके पक्षधर हैं आप, उनके पक्ष लेते हैं। यहां असुर लोग अपनी आसुरी प्रवृत्ति का यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि स्वाध्याय संपन्न, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं भाई, संपन्न भी हैं और हम भी मतलब बड़े बड़े कार्य किए हैं, देवताओं से हमारे अंदर कोई शक्ति कम नहीं है। और वास्तव में अगर यह देखा जाए तो भगवान पक्ष नहीं लेते देवताओं का, तो असुरों ने उनको तो फिर ठीक कर देते। असुर लोगों में बल था, ऐसी बात नहीं, अगर भगवान पक्ष नहीं लेते तो निश्चित रूप से उनको हरा देते, लेकिन भगवान सदा से अपने भक्तों का पक्षपात किए हैं। कहते तो हैं कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन भगवान के अंदर दोनों स्थितियां हैं, सुख दुख हानि लाभ एक साथ है, इसलिए उनको आधा आधा उर्ध कोई एक शब्द आया है मैं भूल रहा हूं कि सब मतलब विभिन्नांश विभिन्न गुण भी विपरीतार्थक और मतलब दोनों विपरीत कार्य और मतलब सम्यक्ष कार्य दोनों साथ साथ भगवान के अंदर होता है, एक साथ दोनों कर सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर यह भाव असुर व्यक्त कर रहे हैं कि भाई हम भी पढ़े लिखे हैं इसलिए हम पीछे के भाव को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आगे क्या होती है इस अनुवाद को हम लोग ध्यान से पहले सुन लें। तो प्रभुपाद जी ने बहुत खिंचाई किया है भगवत विमुख व्यक्तियों के प्रति, जो तात्पर्य लिखे हैं श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी खबर लेते हैं। एक जगह मैं इंग्लिश का प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद जी, तो उसमें एक शब्द कहे हैं कि एजुकेटेड फुलिस पर्सन, पढ़े लिखे मूर्ख व्यक्ति, कि अपने पढ़ाई के अर्थ को या अपने पढ़ी लिखी बुद्धि को वह सदुपयोग नहीं करते, ठीक ढंग से उपयोग में नहीं लाते, क्योंकि बुद्धिमान उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी बुद्धि की सदुपयोगिता करता है। बुद्धि की सदुपयोगिता यह नहीं है कि जिसने बुद्धि दिया उसी को हम नकार दें, जिनतन दियो ताहि बिसरायो ऐसे नमक हरामे, सूरदास जी लिखते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलगा में, ऐसे हमें बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख जाए तो हम भगवान को ही, भगवान है ही नहीं, अरे मैंने किया, इस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए। पढ़ाई की असली सदुपयोगिता है कि सारा कुछ उसी के दृष्टि मात्र से, संकेत मात्रेण, उसके इशारा मात्र से यह संसार चल रहा है। उसको कुछ करना भी नहीं है, चैन की बांसुरी हमारे ठाकुर जी बजाते रहते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, एकदम इशारे मात्र से जगत चल रहा है और आनंदमय चल रहा है। भागवत के दशम स्कंद के अंदर एक श्लोक के व्याख्या में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अगर कोई सती स्त्री है तो उसका पहला कर्तव्य यह बनता है कि सब प्रकार से अपने पति को खुश रखें, मन से, वाणी से, शरीर से और कर्म से, ये चार प्रकार से खुश किया जा सकता है। तो उस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य के अंदर कि वास्तविक सबके पति कौन है? भगवान। स्त्री हो या पुरुष, सबको अपने मन से, वाणी से, शरीर से और कर्म से परम पति भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अगर हम और किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं तो हम खुश भी नहीं कर पाएंगे और बदले में हमें जूता पड़ेगा। यह देखा जाता है, घर घर की स्थिति है, किसी को आज तक कोई खुश नहीं गया, इसलिए सबसे बड़े पति भगवान है। पालयति इति पति, सब तरह से सब जीवों का और अच्छे ढंग से पालन करते हैं, इसलिए सबके पति भगवान है। इसलिए भक्तों के लिए ही नहीं, स्त्री और पुरुषों के लिए ही नहीं, बाल और वृद्धों के लिए ही नहीं, सबके लिए भगवान सेवनीय है, पूजनीय है। इसलिए उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी जो सारांश लिखे हैं इस अध्याय का, वो हम पढ़ेंगे और उसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रसंग को हम लोग सुने हैं अपने महाराज के मुखारविंद से, बहुत कुछ बोला जा सकता है इस श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी जो लिखे हैं हम लोगों के लिए इस अध्याय का सारांश, संक्षिप्त पूरे अध्याय को संक्षेपण करके प्रभुपाद जी ने सारांश रूप में दे देते हैं। तो इस अध्याय का सारांश क्या है, थोड़ा हम लोग प्रभुपाद की भाषा में सुने, इसके बाद इन श्लोकों के संदर्भ में प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सातवें अध्याय का सारांश इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन आने वाले और नहीं आने वाले भी कुछ लेकर के यहां से जाइए, क्योंकि सुन जितना हम कानों के माध्यम से भगवान को देख सकते हैं उतनी इन आंखों से हम नहीं देख सकते भगवान को। सुनिए और उस चीज को लेकर के जाइए, मनन कीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं सातवें अध्याय का सारांश इस प्रकार है, भगवान ने कच्छप का अवतार लेकर समुद्र में गहरी डुबकी लगाई जिससे वे अंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर सकें। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष प्राप्त हुआ, सभी इस विष से भयभीत हो उठे, किंतु शिव जी ने इसे पीकर सबको संतुष्ट किया तथा कथित जो शैव भक्त हैं इसी प्रसंग को लेते हैं, अपने पक्ष के चीज को ग्रहण करते हैं कि भगवान शिव ने भी तो विष पिया था, इसलिए हम भी गांजा और विषैले पदार्थ ले रहे हैं तो हम कौन से गलत कर रहे हैं। लेकिन यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान शिव ने इस संसार की रक्षा हेतु विषपान किया था और वो भी गले से नीचे नहीं जाने दिए, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष में ही गले के अंदर ही उस विष को रख लिए। यह समझौता हो गया कि मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे देवता तथा दैत्य परस्पर सम्मान रूप से बांट लेंगे। तो उन्होंने वासुकी को लाकर उसे मथाने की रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया। भगवान की दक्ष योजना के अनुसार असुरों ने सर्प का मुख भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ भाग। मैं भगवान के चलाकी के अनुसार जो विपरीत अर्थ था उसको मैंने बोला, लेकिन उसको अच्छे ढंग से याद लीजिएगा। भगवान ने यही इच्छा अपने अंदर रखा था कि अगर पहले मैं मुख को पकड़ता हूं तो मुख को पकड़ने के लिए असुर लोग लड़ेंगे, जिससे हमें देवताओं को बचाना है, इसलिए पहले उन्होंने पकड़ा था। फिर बाद में पीछे के भाग को देवता और भगवान अजित स्वयं पकड़ेंगे। तब उन्होंने बड़े ही यत्न से सर्प को दोनों दिशाओं से खींचना शुरू किया। चूंकि मंदर पर्वत के रूप में प्रयुक्त मथानी अत्यंत भारी थी और जल के भीतर किसी आधार पर टिकी ही नहीं थी, अतः वह जल में डूब गई और इस तरह देवताओं तथा असुरों का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब कच्छप रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। फिर तो मंथन बड़ी तेजी से चालू हो गया। मंथन के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में विष उत्पन्न हुआ। जब प्रजापतियों ने देखा कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है तो उन्होंने शिव जी के पास जाकर सच्ची स्तुतियां की। बनावटी नहीं, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं ध्यान देना चाहिए, सच्ची स्तुति की। यह नहीं कि हमारी कथनी और करनी मतलब अलग अलग है, पूरे आर्त भाव से, समर्पण भाव से इन लोगों ने स्तुति किया कि अब बचाइए, अब कोई बचाने वाला कोई दिखता नहीं। शिव जी आशुतोष कहलाते हैं क्योंकि वे भक्त पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष शब्द का दूसरा अर्थ है जल्दी खुश होने वाले। अतः उन्होंने मंथन से उत्पन्न सारे विष को भी पी जाना तुरंत स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने विष पीना स्वीकार कर लिया तो देवी दुर्गा अर्थात शिव जी की पत्नी भवानी तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें शिव जी के शौर्य का पता था। और पत्नी संसार में चाहेगी कि मेरा पति विष पिए, लेकिन सती को यह पता था कि इनके अंदर कितनी शक्ति है। निसंदेह उन्होंने इस समझौते पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तब शिव जी ने सर्वव्याप्त विनाशकारी विष को अपनी हथेली पर एकत्र किया और वे उसे पी गए। इस विष के पी जाने से उनकी गर्दन नीली नीली सी हो गई। विष का थोड़ा सा अंश उनकी हथेली से भूमि पर गिर पड़ा। इसी विष के कारण विषैले सांप, बिच्छू, पौधे तथा संसार की अन्य सारी विषैली वस्तुएं उत्पन्न हुई। एक दो बूंद गिरने के कारण सांपों के अंदर, बिच्छुओं के अंदर इतने विष आ गए। और कुछ कुछ ऐसे विषैले पौधे भी होते हैं, खैर शहर के लोगों को तो पता भी नहीं है। जंगल में एक ऐसा पौधा होता है कि अगर उस पौधे से, अगर पौधे के ऊपर अगर पानी गिरा दीजिए और उस पौधे के पत्ते को अगर टच करके वो पानी अगर किसी के शरीर पर गिर जाए तो जला देता है, पूरे शरीर को, शरीर के चमड़ी को उधाड़ देता है। ऐसे ऐसे विषैले पौधे भी। अब आज के श्लोक का तात्पर्य सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के संदर्भ में क्या लिखते, पहले अनुवाद को मैं पढ़ता हूं उसके बाद ध्यान से सुनिएगा तात्पर्य को भी। दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि वह अजा सर्प का अशुभ अंग है। बदले में वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ ही कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को ही पकड़ना चाहते हैं। देखिए, देवताओं की रक्षा हेतु भगवान ने यह योजना बनाया, पहले आगे के भाग को पकड़ा, लेकिन ये चाहते थे कि, जानते थे भगवान के असुर मानेंगे नहीं, अपने हट पर अड़ेंगे, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। अब तभी तो देवता लोग कह रहे भैया हम क्यों पीछे के भाग को पकड़ेंगे, हम आगे के भाग को ही पकड़ेंगे। अब प्रभुपाद जी आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के हृदय की भावना को व्यक्त कर रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि दैत्य ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही दैत्य को सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करना होता है। असुरों का स्वभाव ही होता है कि जो भगवान कहते हैं ठीक उनके उल्टा चलना। भगवान के अगर बात को मान ले असुर लोग तब तो उन्हें दैत्य या असुर कहा ही नहीं जाएगा। यह उनकी प्रकृति है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसे वास्तव में देखा है। सुन लीजिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कि हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसे वास्तव में देखा है। हम लोग गो रक्षा का समर्थन करते हैं और लोगों को अधिक दूध पीने तथा दूध की बनी हुई सुस्वादु वस्तुएं खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दैत्यगण ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने मात्र के लिए यह दावा करते हैं कि वे विज्ञान में अग्रसर हैं, जैसा कि स्वाध्याय श्रुत संपन्ना शब्दों से यह वर्णन हुआ है। तो उनका कहना है कि उनके वैज्ञानिक विधि से यह पता चलता है कि दूध खतरनाक होता है और गांवों की हत्या करके प्राप्त किया हुआ गोमांस अधिक पौष्टिक होता है। यह है असुरी प्रवृत्ति। प्रभुपाद जी ने पढ़े लिखे के विषय में यहां संकेत किया है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं यह खोज करते हैं कि गाय के शरीर से निकला हुआ दूध वह उतनी पौष्टिक आहार नहीं है जितना कि गोमांस। यह है आसुरी प्रवृत्ति। वास्तव में गाय के जो शरीर से दूध निकलता है इसकी तुलना अमृत से की गई है, और जो चरणामृत बनाया जाता है वह भी गाय के दूध से ही बनाया जाता है, और दूसरे दूध से बनाया हुआ वह उतना पवित्र नहीं होता जितना कि गाय के दूध से। आप दशम स्कंध पढ़ सकते हैं भागवतम का, भगवान स्वयं अपने मुख से गाय के स्तन को पकड़ करके डायरेक्ट स्तन पान उन्होंने किया है, दूध पान किया। इसका मतलब कि भगवान के भी पूजनीय गाय हैं। हम लोग ऐसा पिक्चर देखते हैं, फोटो देखे हुए हैं कि भगवान एक तरफ श्रीमती राधा रानी को आलिंगन किए हैं और दूसरे तरफ गो माता को आलिंगन किए। इससे यह संकेत होता है कि जितना प्रिय राधा रानी है भगवान को उतना प्रिय गौ माता है भगवान को। और पढ़े लिखे व्यक्ति क्या तर्क निकालते हैं कि हमें दूध से उतनी पौष्टिक आहार नहीं मिलती, क्योंकि वो असुरों जैसे श्रुत संपन्ना है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने देखा है, कृष्ण भावनामृत में भी मैंने प्रत्यक्ष आए हुए व्यक्तियों को देखा है, अगर हम कभी इस बात का प्रचार करते हैं तो लोग इस बात को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, आसानी से स्वीकार नहीं करते। यह आसुरी भाव है। कथा का सुनने का यह अर्थ ही होता है कि भगवान के भगवत्ता को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना, उसमें किंतु परंतु और अपनी बातें उसके अंदर कुछ जोड़ना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं करना कि भगवान में किसी भी प्रकार की कमी है। भागवत का एक लाइन में अर्थ यही है कि भगवान को सहर्ष स्वीकार करना और कुछ नहीं। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो किया है वह परफेक्ट है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी उसमें टीका टिप्पणी निकालते हैं। रूपा जी आगे लिखेंगे कि गीता और भागवत के श्लोकों पर भी लोग विभिन्न प्रकार से टीका लिखते हैं, लेकिन श्लोक के अर्थ को समझते नहीं, लेकिन गीता पढ़े नहीं लेकिन कुछ टीका लिखना प्रारंभ कर देते हैं। उनका कहना है कि उनके वैज्ञानिक विधि से यह पता चला है कि दूध खतरनाक होता है और गौ की हत्या करके प्राप्त किया हुआ गोमांस अधिक पौष्टिक होता है, यह आसुरी प्रवृत्ति है। यह मतभेद सदैव चलता रहेगा, निसंदेह यह आदि काल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसी ही होड़ थी। दैत्यों ने अपने तथाकथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सांप के मुख भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा और दैत्यों को पूंछ पकड़ने दी, क्योंकि यह खतरनाक नहीं थी, लेकिन स्पर्धा की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। असली बात यहां खुलती है। भगवान उनकी रक्षा करना चाहते थे, उस विषैले अग्नि से बचाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने पहले ही चालाकी किया कि असुर लोग यह ना कहें कि आप पक्ष ले रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप में भगवान प्रत्यक्ष पक्ष लिए। आड़ में भगवान ने स्वयं पक्ष लिया है कि को देवताओं को बचाना है। यदि देवता विष्पान करते तो दैत्य यह संकल्प करते हम भी विष से विष में हिस्सा बटाकर और इसे पीकर के शान के साथ मरेंगे। अगर शायद देवता लोग अगर विष पीने के लिए कहते कि हम पिएंगे तो उस विष जो भी जितना विष निकला था उसमें भी हिस्सेदारी के लिए लड़ पड़ते दैत्य लोग कि हम भी विष पिएंगे लेकिन शान से मरेंगे, हम झुक करके नहीं मरेंगे। यह है आसुरी प्रवृत्ति। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी से दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है और संस्कृत कार्यों को करने के लिए विख्यात है तथा उच्च कुल में जन्म लिए हुए है तो फिर वह दैत्य क्यों कहलाए? इसका उत्तर यही है कि भले ही कोई कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, शिक्षा प्राप्त क्यों न कर ले तथा उच्च कुल में क्यों न जन्मा हो, किंतु यदि वह ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं सुनता तो वह दैत्य असुर है। पढ़ाई लिखाई की असली सदुपयोगिता यह है कि भगवान ने जो कहा है उसको स्वीकार करना। एक जगह एक लेक्चर में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई भगवान की कही हुई बात को नहीं मानता है तो वह वैसा ही है। श्रुति को मां कही गई है, श्रुति मतलब शास्त्र, गीता भागवत रामायण चैतन्य चरितमानस जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उसको श्रुति कहा गया है। अगर इस श्रुति का श्रुतुरूपी मां का अगर वह बात नहीं मानता है तो वह अपने बाप को भी नहीं मानता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर बाप का प्रमाण देना हो तो मां ही प्रमाण दे सकती है कि यह तुम्हारे पिताजी हैं। तो मां कहती है कि यह तुम्हारे पिताजी हैं तो स्वीकार किया जाता है। वैसे ही शास्त्र कहती है कि नहीं, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है और सब कुछ वही कर रहे हैं तो उसमें किंतु परंतु ना करें, स्वीकार करें। नहीं तो अगर भगवान के वाणी को नहीं मानते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह अपने बाप को भी नहीं मानता। यहां स्पष्ट लिखते हैं ईश्वर विहीनता। पढ़ लेने के लिए का अर्थ यह है, गीता भागवत अध्ययन करने का अर्थ यह है कि हम भगवान को ठीक रूप से जाने समझें कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम समर्थव्यम, भगवान करने और नहीं करने लायक सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं और समर्थ है। कोई कितना भी सुशिक्षित क्यों न हो किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध न हो, भगवान के प्रति आज्ञाकारिता न हो तो वह असुर है। इसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में किया है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। यह आजकल के पढ़े लिखे लोगों की योग्यता है जो भगवान को नहीं मानते। जानने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी नहीं मानते हैं वो पक्का रूप में असुर है।
असुर लोग यही तो जानते हैं, भगवान के सामने ही, अरे अपने सामने ही देखते हैं कि भगवान ने कितना बड़ा बड़ा असंभव कार्य किया। और हाथ के छोटे अंगुली पर भगवान ने 7 कोस का गोवर्धन पर्वत धारण किया और 7 दिन 7 रात हिले न डोले। लेकिन फिर भी इस चीज को देखने के बाद और लोग नहीं समझ पाए, असुर लोग नहीं समझ पाते, अरे उन लोग उन्हें भी नहीं उठाया, सारे ग्वाल वाल लोगों ने मिलकर के उठाया। एक ब्रज रसिक ने लिखा है कि को कवि वर्णन कर सके ब्रज के रज के मूल, जाके कण कण में बसे युगल चरण की धूल। इसकी महिमा रसिक जन ही जानते हैं कि ब्रज के धूल के अंदर क्या शक्ति है, ब्रजराज में क्या शक्ति है, ब्रजराज में क्या शक्ति है, और ब्रजराज के जो भक्त हैं उनके अंदर क्या शक्ति है। रसिक जन जो भक्त हैं, जो भगवत पथ पर चलते हैं, वही इस बात का अनुभूति कर सकते हैं। जो दुष्ट दुष्कृत निष्कपट मूर्ख तथा अधम है और जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो नास्तिक प्रकृति के असुरों का साथ देते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। आसुरम भावम ईश्वर के अस्तित्व को या उनके दिव्य उपदेशों को न स्वीकार करने का सूचक है। भगवत गीता साक्षात भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से युक्त है, किंतु असुरगण इन उपदेशों को प्रत्यक्ष स्वीकार न करके मनमाने ढंग से टीकाएं करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, इससे स्वयं उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि आसुरी ईश्वर विहीन पुरुषों से सचेत रहे। यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जो व्यक्ति भगवान के भगवत्ता के विषय में सुनाता तो है, लेकिन उसके भी इसमें शंका है शायद, तो वैसे व्यक्ति से हमेशा सजग रहना चाहिए। अदृढ़ न हते मंत्र, अगर हमें हरे कृष्ण मंत्र जो हम लोग जाप करते हैं, अगर उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि पता नहीं यह मंत्र है हमारी रक्षा कर नहीं पाएगा, तो शायद उसकी रक्षा ही नहीं कर पाएगा। अगर श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि अवश्य यह महामंत्र हमारी रक्षा करेगा, तब तो यह पूरा पूरा फल दिखाएगा। प्रमादे न हतम श्रुतम, जो प्रमाद में उन्मत्त है वो व्यक्ति क्या समझ पाएगा कि श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप से रूपेण विश्वास करना किसी भी मंत्र में, किसी भी भगवान के शक्ति में, किसी भी प्रकार की वो शंका नहीं रखता। भगवान कुछ गलत करते हैं या भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं या भगवान भी करने में असमर्थ है, इस प्रकार की बातें वो अपने हृदय में नहीं लाते। भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार यदि कोई ईश्वर विहीन असुर सुशिक्षित भी हो तो उसे मूढ़ नराधम तथा माया अपरहित ज्ञान समझना चाहिए। असली ज्ञान का तत्व यह है, असली ज्ञानी पुरुष का पहचान यह है कि वह सर्वरूपेण भगवान के वाक्यों को, भगवान के कहे कई कई की हुई लीलाओं को और उनके किए हुए करतूतों पर पूर्ण विश्वास रखे कि नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ है। यह अर्थ है। अगर हम लोग पढ़ लिख करके भी भगवान को अगर ठीक ढंग से नहीं समझ पाए या उसके अंदर भी अगर कुछ तार्किक पॉइंट निकालते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग नराधम हैं। जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? एक ब्रज के बहुत ही वरिष्ठ भक्त के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनकी एक बार कथा सुना, तो अपने कथा में उन्होंने बताया कि इस संसार में फंसने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था तीन कि तीन जो जीव होते हैं उनकी अपने शरीर से उत्पन्न हुए अपने बच्चों के प्रति बहुत ममता होती है, बंदरी, बिच्छू और सांप। जबकि हमने पढ़ा है कि बिच्छू एक बार में हजार अंडा देते हैं, सांप भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु बिच्छू और सर्प अपने ही अंडे को, अंडे से उत्पन्न बच्चे को खा जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु। और बंदरी के विषय में भी कहा गया है कि बंदरी अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, इतना उसको अपना बच्चा प्रिय है कि अगर उसका बच्चा मर भी जाता है तब उस मरे हुए बच्चे को भी अपने गोद से चिपकाए रहती है। जब तक उसका बच्चा सड़ करके टुकड़े टुकड़े में बिखर नहीं जाए तब तक उस बच्चे को छोड़ती नहीं। तो इससे अर्थ यह निकलता है कि जो भी वैदिक ज्ञानी है, भक्ति पथ पर चलने वाले वैश्विक व्यक्ति हैं, वह यह संकेत करते हैं कि जहां इस सांसारिक चीजों में हमारी ममत्व ज्यादा हो गई, वही हमारे मरने का या इस संसार में फिर से आने का वही कारण बनता है। अरे इतना प्यार हम भगवान के प्रति जाहिर करें। भागवत में उदाहरण दिया हुआ है कि अगर जितना मां अपने बच्चे से अगर प्यार करती है, अगर उसका करोड़वां भाग, करोड़वां भाग में से एक भाग केवल अपना प्रेम भगवान के प्रति अगर वो जाहिर करे तो निश्चित रूप से वह भगवान का बन जाएगा। लेकिन उतना भी करने में जीव असमर्थ है, इतना मायावाद जीव है कि वह भगवान से प्रेम करने की तरफ अपना मुख ही नहीं करता, सदा पीठ भगवान के तरफ किए रहता है, उन्मुख बना रहता है कि नहीं हम संसार में ही सुख में, शांति में। अगर हमें असली सुख और शांति और भगवान से प्रेम चाहिए तो उत्तरोत्तर अपना मुख भगवान के तरफ करना चाहिए। भगवान के तरफ करने का मतलब है कि उनकी कही हुई वाणी को बड़े ही धैर्य के साथ और गंभीरता के साथ उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। देख रहे हैं ना कि दो प्रकार के जीव होते हैं, असुर और दैत्य और दानव, दैत्य और देव, तो इनकी प्रवृत्ति देख रहे हैं। और इतनी आसुरी प्रवृत्ति की बढ़ोतरी के लिए इस संसार में कितने एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। जीव ऐसे ही फंसा हुआ है और उस फंसने वाली प्रतिक्रिया को कितना दिखाया जाता है। एक साबुन पर भी या एक बीड़ी के प्रचार में भी मैं देखा था कि स्टिकर लगाया हुआ था तो उससे भी स्त्री का चित्र था। साबुन पर देखते हैं हर जगह, क्योंकि अब पता है इस संसार के लोगों को कि जो आकर्षण की वस्तु है वह स्त्री है। अरे भैया जीव ऐसे ही फंसा हुआ है, उसको छुड़ाने का प्रयास करो ना, उसको फंसाने का क्यों प्रयास कर रहे हो। लेकिन किसी भी जीव को अगर आसानी से छूटना है इस संसार से तो गीता और भागवत में कही हुई भगवान की वाणी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जितना हम सुनेंगे उतना ही अपने को छुड़ा पाएंगे, जितना विमुख रहेंगे उतना ही हम फंसते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसलिए सुनना जरूरी है। इस श्लोक के अंदर भी आया है कि श्रद्धा श्रुत संपन्न। असुर लोग कहते हैं कि मैंने पढ़ा भी है और प्रमाणिक लोगों से श्रुत सुना भी है। सुनना प्रमाणिक है, सुनने से हम अपने को छुड़ा सकते हैं और सुनने से ही हम अपने को फंसा सकते हैं। संसारिक चीजों को हम सुनते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, उसमें फंसते जाते हैं। छूटने के लिए भगवान के विषय में सुनना है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 79 नंबर प्यार में कहा गया है कि काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी देव रेड़ी पित्रादि के कभू ना कभू नहीं रेड़ी। कि अगर संसार को त्याग करके जीव अगर कृष्ण का भजन करता है शास्त्र का आज्ञा मान करके, तो वह किसी भी प्रकार के देवता के ऋण से, पिता के ऋण से, या इस संसारिक किसी भी प्रकार के ऋण से कभी नहीं ऋणी, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर ऋण नहीं रह जाता। क्यों? कि काम त्यागी कृष्ण भजे, वह इस संसार के बंधनों को, संसार के भोगों को त्याग करके वह केवल कृष्ण में के भजन में मस्त है। क्या काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, शास्त्र का यही आज्ञा है कि कृष्ण का भजन करो, और शास्त्र का आज्ञा मान करके कृष्ण का भजन करता है तो देव ऋषि पित्रादि के कबू नहीं ऋणी, देवताओं के ऋण से, पैतृक ऋण से, या किसी भी प्रकार के ऋण से वह ऋणी नहीं होता, वो उत्तीर्ण हो जाता है, इस संसार से अपने को छुड़ा लेता है। हरे कृष्ण। मैं 10 मिनट समय का अतिक्रमण किया, आप लोग क्षमा करना। अगर कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लिया जा सकता है।
भगवान के करीब होते हुए भी भगवान को समझ नहीं पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते।
अगर अंततः गहराई में जाइए तो भगवान को भी कुछ लीला संपन्न करने के लिए पात्र चाहिए, क्योंकि एक श्लोक के टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि भगवान को भी जरूरत है स्पर्धा कराना, क्योंकि खेल भी खेलते थे तो भगवान उत्साह दिखाते थे, वैसे ही लीला में भी कोई विपक्ष दल होना चाहिए जिसकी माता को समझा जा सकता है कि नहीं इस पक्ष से यह पक्ष श्रेष्ठ है। जानने को तो भगवान जानते थे, और आगे अगर पढ़ेंगे इसी प्रसंग में तो अगर देखा जाए तो वासुकी के शरीर के अंदर भगवान ने निद्रा रूप में प्रवेश किया कि 1,00,000 योजन, यह मंदराचल पर्वत था, 1,00,000 योजन का मतलब है कि 400 कोस, एक कोस में, एक योजन में 4 कोस होता है, तो 1,00,000 योजन यह लंबा चौड़ा था पहाड़। अब सोच लीजिए कि वासुकी के शरीर पर इतना बड़ा पर्वत का जब मंथन किया जा रहा था, स्वयं भगवान भी देवताओं और दानवों के साथ मंथन किए हैं, जब देखे कि बहुत देर से देवता और असुर मंथन कर रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा है, तो स्वयं भगवान शक्ति संचार करके दोनों पक्षों के अंदर और स्वयं मंथना शुरू किया। फिर भी इतने तेजी से मंथन करने के बाद भी वासुकी के पीठ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खुजला रहा है, कोई उसके शरीर को जैसे खुजला रहा, आनंद में थे। और देवताओं में और दानों में भी भगवान ने उत्साह और इतना बल दिया कि जोर से मंथन करो, और भगवान एक अपने शक्ति के रूप में उस मंदराचल पर्वत को पकड़ करके अपने हाथ से और अपने ही शरीर पर कच्छप के रूप में शरीर धारण करके भगवान ने अपने ही शक्ति के ऊपर इस मंदराचल पर्वत को धारण किया। अगर देखा जाए तो सब कुछ भगवान की शक्ति कार्य करी और भगवान ने ही सारा मंथन किया। जीव कहता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, अरे तू क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं तेरे अंदर शक्ति है। देखो तो ठीक से, देखते कि पश्य नपि न पश्यति, हम लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते कि सब कुछ भगवान कर रहा है। असली साधु देखता है कि सब कुछ भगवान करते, जानते थे भगवान, लेकिन उनको लीला स्पर्धा के लिए दूसरा पक्ष चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर हरि प्रभानंदे, हरि हरि बोल।